अगर एक ऐसी अदालत की तस्वीर दिमाग में बनाई जाए, मतलब जहां सब कुछ पहले से तय हो, कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा है, उस पर देशद्रोह और ईशान नंदा जैसे सबसे गंभीर आरोप हैं।
हाँ, और गवाह अपनी गवाही दे चुके हैं, है ना? जज बस मौत की सजा सुनाने ही वाले हैं। ऐसी स्थिति में तो कोई भी इंसान अपनी जान की भीख ही मांगेगा।
बिल्कुल, या कम से कम खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेगा।
लेकिन इस कहानी में अचानक से बाजी पलट जाती है। बचाव पक्ष का वो व्यक्ति अपनी सफाई देने के बजाय पलटकर जजों पर ही मुकदमा ठोक देता है।
क्या बात है, मतलब वो खुद उन्हें उनके ही इतिहास का एक ऐसा कड़वा सच याद दिलाता है जिसे वे बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे।
सही कहा। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे ही असली और वैचारिक कोर्टरूम ड्रामा के पन्नों को पलटने वाले हैं।
और देखो, ये वाकया महज एक पुरानी घटना नहीं है, ये इस बात का एक बहुत ही जटिल उदाहरण है कि सत्ता, धर्म, राष्ट्रवाद और नए विचारों के बीच टकराव असल में कैसे होता है। बिल्कुल, आज हम डॉक्टर क्रेग कीनर के ऐतिहासिक लेक्चर 10 पर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रेरितों के काम यानी एक्ट्स के अध्याय 6 और 8 पर आधारित है।
हाँ, ये वो समय था जब शुरुआती ईसाई आंदोलन को भयंकर वैचारिक बहसों और उसके बाद एक खौफनाक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। और डॉक्टर कीनर का ये विश्लेषण इसलिए भी खास है क्योंकि ये बिना किसी धार्मिक पक्षपात के सिर्फ इतिहास को खंगालता है।
तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक ऐसा विरोध जिसे एक नई विचारधारा को पूरी तरह से कुचलने के लिए बनाया गया था, उसने अनजाने में उसी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैला दिया।
दरअसल यही इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है।
बिल्कुल, तो चलिए इस पूरी कहानी की जड़ों में चलते हैं। इस ऐतिहासिक टकराव की शुरुआत यरूशलेम के एक खास समूह से होती है जिसने सबसे पहले स्टीफन नाम के एक व्यक्ति का विरोध किया था। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि ये कोई आम समूह नहीं था, है ना?
हाँ, एकदम सही। इसे फ्रीड पर्सन्स या स्वतंत्र किए गए लोगों का आराधनालय कहा जाता था, और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस समूह के मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना इस पूरी घटना को समझने की असली कुंजी है।
तो ये फ्रीड पर्सन्स आखिर थे कौन, मतलब वे वहां पहुंचे कैसे?
लैटिन में इन्हें लिबर्टीनी कहा जाता था। ये मूल रूप से वे यहूदी थे जिन्हें रोमन जनरल पोम्पी ने 63 ईसा पूर्व में यरूशलम पर कब्जा करने के बाद गुलाम बना लिया था। फिर इन्हें युद्ध बंदियों के रूप में रोम ले जाया गया।
अच्छा, तो वे गुलाम थे?
हाँ, शुरुआत में। लेकिन समय के साथ या तो उन्होंने अपनी आजादी खुद खरीद ली या अन्य धनी लोगों ने उन्हें आजाद करवा लिया। और रोमन कानून का एक बहुत ही दिलचस्प नियम था, अगर किसी रोमन नागरिक के गुलाम को आजाद किया जाता था तो वो पूर्व गुलाम भी अपने आप रोमन नागरिक बन जाता था।
अरे वाह, मतलब उनके पास रोमन नागरिकता आ गई थी। वो तो समय एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार हुआ करता था।
बहुत बड़ा। जब ये लोग वापस यरूशलेम आए तो उनके पास एक खास तरह का रुतबा था। वो ग्रीक बोलते थे और उनका रहन सहन काफी हद तक यूनानी हो चुका था।
ये तो एक अजीब सी दोहरी पहचान वाली स्थिति हो गई। मतलब एक तरफ रोमन नागरिकता का रुतबा और दूसरी तरफ यरूशलेम के रूढ़िवादी समाज की नजर में वे बाहर से आए हुए लोग थे।
बिल्कुल, उनकी संस्कृति थोड़ी अलग थी।
तो चलिए इसे समझते हैं। ये मुझे आज के दौर के उन प्रवासियों की याद दिलाता है, मतलब जो डायस्पोरा होते हैं, जो पीढ़ियों तक विदेश में रहने के बाद अपने मूल देश लौटते हैं। अक्सर वे अपनी जड़ों को साबित करने के चक्कर में वहां के मूल निवासियों से भी ज्यादा कट्टर हो जाते हैं।
यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है, ये मनोवैज्ञानिक पहलू उन पर पूरी तरह से लागू होता है। इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा सामाजिक दबाव था। उस समय यरूशलम में फरीसियों का दबदबा था, जो धार्मिक शुद्धता को लेकर बहुत सख्त थे।
और जाहिर है, फरीसी इन पूर्व गुलामों को नीची नजर से ही देखते होंगे।
बिल्कुल देखते थे। उनकी नजर में अगर आपका अतीत गुलामी का रहा है तो आपकी धार्मिक वंशावली संदिग्ध है। इसलिए खुद को शुद्ध और पक्का यहूदी साबित करने के लिए ये फ्रीड पर्सन्स का समूह अत्यधिक उग्र और रूढ़िवादी हो गया था।
और ठीक इसी समय स्टीफन की एंट्री होती है, जो खुद उसी हेलेनिस्ट समुदाय का हिस्सा था, लेकिन वो एक नई विचारधारा का प्रचार कर रहा था।
हाँ, और स्टीफन की बातें उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक असहमति नहीं थी, वो उनकी उस नई नई बनाई गई धार्मिक पहचान के लिए एक सीधा खतरा थी।
तो जाहिर है, जब पहचान पर हमला होता है तो बहस का तीखा होना लाजमी है। लेकिन मैंने पढ़ा कि स्टीफन कोई साधारण प्रचारक नहीं था, वो उन कुलीन लोगों के साथ हर बौद्धिक बहस जीत रहा था, है ना?
हाँ, वो अपनी बुद्धि और तर्कों में इतना निपुण था कि वे पढ़े लिखे फ्रीड पर्सन्स उसका सामना ही नहीं कर पा रहे थे। और इतिहास गवाह है कि जब स्थापित लोग बौद्धिक रूप से हारने लगते हैं
तो वे अनैतिक तरीकों पर उतर आते हैं।
बिल्कुल। इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझाने के लिए डॉक्टर कीना ने अपने एक प्रोफेसर का उदाहरण दिया है। उनके वे प्रोफेसर इतने अड़ियल थे कि एक बार डॉक्टर कीनर ने उनसे पूछा कि अगर कोई सच में मरे हुए में से जी उठे तो क्या आप विश्वास करेंगे?
और उनका जवाब क्या था?
उनका जवाब था, नहीं, मैं फिर भी विश्वास नहीं करूंगा।
बाप रे, मतलब इसी ही तो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब नए तथ्य आपकी पुरानी मान्यताओं से टकराते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है।
एकदम सही बात है। फ्रीड पर्सन्स के लोगों ने भी यही किया। जब वे बहस में हार गए तो उन्होंने स्टीफन को फंसाने के लिए झूठे गवाह खड़े कर दिए।
एक सेकंड, यहाँ एक बात बहुत खटकती है। हम एक ऐसे समूह की बात कर रहे हैं जो खुद को बहुत धार्मिक मानता था।
जी।
वे लोग अपने ही भगवान के नाम पर अदालत में कसम खाकर झूठ कैसे बोल सकते हैं?
हाँ, इस सवाल के जवाब में ही सबसे बड़ी विडंबना छुपी है। प्राचीन दुनिया में रेटोरिका एड अलेक्जेंड्रम जैसी किताबें आम थी जो अदालतों में जीतने के लिए गवाहों को कसम खाकर झूठ बोलने की कला सिखाती थी।
अच्छा, झूठ बोलने की ट्रेनिंग?
हाँ, लेकिन यहूदी कानून में ये जघन्य अपराध था। अब देखो, स्टीफन पर उन्होंने आरोप लगाया ईश निंदा का, यानी भगवान का अपमान करने का। लेकिन असली विडंबना ये थी कि भगवान का अपमान करने का सबसे सीधा तरीका था उनके नाम की झूठी कसम खाना।
मतलब जो लोग स्टीफन पर भगवान का अपमान करने का आरोप लगा रहे थे वे खुद झूठे गवाह खड़े करके भगवान को सबसे ज्यादा कलंकित कर रहे थे।
बिल्कुल। उन्होंने अपनी संस्था को बचाने के लिए अपने ही धर्म के मूल सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब धर्म और राष्ट्रवाद मिल जाते हैं तो ये एक खतरनाक मिश्रण बन जाता है। स्टीफन पर सिर्फ ईश निंदा का आरोप नहीं था, बल्कि ये भी था कि वो पवित्र मंदिर और कानून के खिलाफ बोल रहा है।
हाँ, और प्राचीन यरूशलम में धर्म और राष्ट्रवाद को अलग किया ही नहीं जा सकता था। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं था, वो उनका सुप्रीम कोर्ट था, सेंट्रल बैंक था और उनकी राष्ट्रीय पहचान था।
तो मंदिर के खिलाफ एक शब्द बोलना मतलब सीधे रोम के अधीन उस यहूदी सत्ता के खिलाफ देशद्रोह था। मतलब अगर आज कोई राजनेता किसी देश के संविधान या सबसे पवित्र प्रतीक पर सवाल उठा दे तो उसे तुरंत देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है।
एकदम सही तुलना है। इसे समझाने के लिए डॉक्टर कीनर ने आधुनिक अमेरिका का एक बहुत ही निष्पक्ष उदाहरण दिया है।
और यहाँ मैं हमारे सुनने वालों के लिए स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस उस ऐतिहासिक पैटर्न की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो स्रोत में है।
बिल्कुल। तो डॉक्टर कीनर बताते हैं कि वामपंथी पादरी यिर्मयाह राइट ने नस्लवाद के कारण और दक्षिणपंथी पैट रॉबर्टसन ने सामाजिक बदलावों के कारण दोनों ने कहा कि अमेरिका पर ईश्वरीय दंड आ सकता है।
और दोनों को ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा होगा।
बिल्कुल। कोई भी देश ये सुनना पसंद नहीं करता कि वो पूरी तरह से नेक नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो पुराने समय में पैगंबर याहुशिया को भी मंदिर के खिलाफ बोलने पर पीटा गया था।
हाँ, और पहली सदी में एक और व्यक्ति था, यहूसू बिन हनानिया, है ना?
हाँ, उसे भी मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी करने पर इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी हड्डियां बाहर दिखने लगी थी। सत्ता हमेशा ऐसे विचारों से डरती है।
तो अब वो क्षण आता है जब स्टीफन सैनहेड्रिन यानी यरूशलेम की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़ा है। उस पर देशद्रोह का तमगा लग चुका है। कोई भी सामान्य इंसान तो अपनी बात वापस ले लेता, लेकिन स्टीफन उन्हें इब्राहिम, यूसुफ और मूसा के समय का इतिहास पढ़ाने लगता है।
दरअसल वो कोई साधारण बचाव नहीं कर रहा था।
मैं भी यही सोच रहा था। मतलब क्या वो जानबूझकर जजों को भड़का रहा था या इसके पीछे कोई पैटर्न था? ये तो ऐसा है जैसे बचाव पक्ष का वकील अचानक से जज पर ही मुकदमा ठोक दे।
क्या सटीक बात कही आपने। वो सच में जजों को दो ऐतिहासिक पैटर्न दिखा रहा था। पहला पैटर्न था कि भगवान केवल यरूशलेम के उस मंदिर तक सीमित नहीं है।
अच्छा, वो कैसे?
उसने याद दिलाया कि भगवान ने इब्राहिम से मेसोपोटामिया में बात की, यूसुफ से मिस्र में और मूसा से सिनाई के रेगिस्तान में जलती हुई झाड़ी में बात की थी।
मतलब ये तीनों जगहें यरूशलेम से मीलों दूर थीं।
बिल्कुल। वो दिखा रहा था कि पवित्रता किसी जमीन के टुकड़े की मोहताज नहीं है। और उसका दूसरा तर्क था अस्वीकृत उद्धारकर्ता का पैटर्न।
Rejected deliverer?
हाँ, स्टीफन ने जजों को याद दिलाया कि इजरायलियों ने हमेशा शुरुआत में अपने उद्धारकर्ताओं को अस्वीकार किया था. यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था और मूसा को भी शुरुआत में ठुकरा दिया गया था.
ओहो, तो वो सीधा सीधा कह रहा था कि जिस तरह उनके पूर्वजों ने यूसुफ और मूसा को ठुकराया, उसी तरह वर्तमान लीडरशिप ने यीशु को ठुकराकर उसी पुरानी गलती को दोहराया.
बिल्कुल, वो साबित कर रहा था कि वे जज उसी अंधी भीड़ का हिस्सा हैं जिसने हमेशा सच्चाई को मारा है. और यहीं से भाषण अपने चरम पर पहुंचता है.
हाँ, जहां वो यशाया का हवाला देता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, और फिर जजों को कठोर गर्दन वाले कहता है.
और इसके बाद तो वो पूरी अदालत एक हिंसक भीड़ में बदल जाती है. वे उसे शहर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डालते हैं. लेकिन इस भयानक दृश्य में लेखक लूक ने एक गहरी विडंबना छिपाई है.
तो इस सब का क्या मतलब है? मैंने पढ़ा है कि गवाह स्टीफन को पत्थर मारते समय अपने कपड़े उतार कर रख रहे थे. ये तो उल्टा है ना, सजा पाने वाले के कपड़े उतारे जाते हैं.
एकदम सही पकड़ा आपने. कानूनी तौर पर सजा पाने वाले को निर्वस्त्र किया जाता था, जो प्रतीक था कि सारा दोष उसी पर है. लेकिन लूक दिखा रहे हैं कि पत्थर मारने वाले गवाह खुद अपने कपड़े उतार रहे हैं.
मतलब वे अनजाने में अपने अपराध स्वीकार कर रहे थे.
हाँ, असली दोषी वे खुद थे. और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि मरने से ठीक पहले स्टीफन स्वर्ग में यीशु को भगवान के दाहिने हाथ खड़े हुए देखता है.
जबकि ज्यादा ग्रंथों में तो यीशु को बैठे हुए बताया गया है ना.
यही तो बात है, प्राचीन अदालतों में जब जज फैसला सुनाता है तो वो खड़ा होता है. यीशु का खड़ा होना ये दर्शाता है कि स्वर्ग की सच्ची अदालत में कार्यवाही चल रही है.
अरे वाह.
जैसे सुकरात के मामले में असली कटघरे में एथेंस के अन्यायपूर्ण जज थे, वैसे ही यहाँ सच्ची अदालत स्वर्ग में बैठी थी. और अंत में स्टीफन भी यीशु की तरह अपने हत्यारों को माफ कर देता है.
लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. स्टीफन की मृत्यु तो बस एक विश्वव्यापी आंदोलन की शुरुआत थी, और इसका केंद्र बिंदु वो युवा था जो वहां गवाहों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था, शाऊल.
हाँ, शाऊल. प्राचीन साहित्य में युवा शब्द केवल उम्र नहीं, बल्कि उस दौर को दिखाता है जब इंसान शारीरिक रूप से ताकतवर, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी से भरा होता है.
और शाऊल के नेतृत्व में यरूशलम ने ईसाइयों पर भारी उत्पीड़न शुरू हुआ.
बिल्कुल, जिससे चर्च यरूशलम से बाहर तितर बितर हो गया.
ये तो आधुनिक युग के स्ट्राइसेंड इफेक्ट जैसा है. मतलब जहां आप किसी चीज को जितना दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से वायरल हो जाती है.
बहुत सही तुलना है. उत्पीड़न वास्तव में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट बन गया. यीशु ने कहा था कि संदेश दुनिया के छोर तक जाना चाहिए, लेकिन लोग तो यरूशलम में ही आराम से रुक गए थे.
अच्छा, तो उत्पीड़न ने उन्हें मजबूर कर दिया.
हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि संदेश प्रेरितों ने नहीं फैलाया, वे तो यरूशलम में ही थे. आम लोगों और शरणार्थियों ने इसे फैलाया.
जैसे फिलिप सामेरिया गया और फिर एक अफ्रीकी दरबारी को सुसमाचार सुनाया.
बिल्कुल, और प्राचीन रोमन दुनिया में इथियोपिया को पृथ्वी का छोर माना जाता था. तो जो चर्च दुख सहता है, वो अपनी मान्यताओं में सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरता है.
तो आज की चर्चा को समेटते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे एक बहस से शुरू हुआ यह विवाद एक व्यक्ति के शहादत में बदल गया, और कैसे उस शहादत ने दुनिया भर में एक नई विचारधारा को जन्म दिया.
सच में ये साबित करता है कि सत्ता के पास भले ही बल हो, लेकिन सत्य को भौगोलिक सीमाओं या एक मंदिर में कैद नहीं किया जा सकता.
एकदम सही. और चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा. जरा सोचिए, जब कोई पुरानी और स्थापित व्यवस्था किसी नए विचार को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, तो क्या वो अनजाने में उसी विचार को हमेशा के लिए अमर नहीं कर रही होती? आज के समय में हमारे समाज की ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो नए बदलावों को खतरे के रूप में देखती हैं?
बहुत ही सोचने वाली बात है.
बिल्कुल, और क्या उनका ये डर ही उनके पतन का कारण बन सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा.